ये रेडियो नेपाल है, हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार शीर्षक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की केंद्रीय कमेटी की पूर्ण बैठक में दो अध्यक्षों की ओर से राजनीतिक प्रतिवेदन हुआ प्रस्तुत। अगले साल चैत के अंतिम हफ्ते में महाधिवेशन करने का प्रतिवेदन का प्रस्ताव। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया राष्ट्रीय सभा चुनाव परिणाम सहित का प्रतिवेदन। और चीन में कोरोना वायरस के कारण अब तक मरने वालों की तादाद हो चुकी है 132 से अधिक। अब समाचार विस्तार से। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के केंद्रीय कमेटी की पूर्ण बैठक आज से काठमांडू में शुरू हुई है। बैठक का उद्घाटन करते हुए पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बैठक का संबोधन किया था। इस दौरान पार्टी के 71 सालों के विभिन्न उतार चढ़ाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में लगभग 2/3 बहुमत की सरकार का संचालन पार्टी के हाथ में आने के बाद देश असाधारण उपलब्धि हासिल कर रही है। बैठक में पार्टी के दूसरे अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने दोनों ही अध्यक्षों की ओर से राजनीतिक प्रतिवेदन पेश किया था। प्रतिवेदन में पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन अगले साल यानी 2077 चैत 25 से 30 गति तक में संपन्न करने का प्रस्ताव किया गया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की केंद्रीय कमेटी की बैठक में कल से सामूहिक बहस होगी। बैठक में कल से वर्णानुक्रम अनुसार 441 केंद्रीय सदस्यों को 15 समूहों में विभाजित कर सामूहिक विचार विमर्श किए जाने की बात नेकपा के प्रचार विभाग उप प्रमुख सूर्य थापा ने बताई। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा ने 4 विधेयकों को प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा। पिछले 4 महीने से संसद में मौजूद नेपाल प्रहरी और प्रदेश प्रहरी विधेयक 2075, प्रहरी समायोजन विधेयक 2075, राष्ट्रीय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विधेयक 2075 और भूमि संबंधी 8वें संशोधन विधेयक 2075 को सभामुख ने आज प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रपति को भेजा। राष्ट्रीय सभा मातहत की विधायन व्यवस्थापन समिति की आज की बैठक ने औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान आईन 2053 के संशोधन के लिए बने विधेयक को संशोधन के साथ पारित किया। समिति के सभापति परशुराम मेघी गुरुंग की अध्यक्षता में सिंह दरबार में हुई बैठक ने सांसदों ठगेन्द्र प्रसाद पुरी और राधेश्याम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन सहित विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया। निर्वाचन आयोग ने माघ 9 को संपन्न राष्ट्रीय सभा चुनाव के परिणाम सहित का प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के समक्ष पेश किया है। आज राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति भंडारी के समक्ष प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया ने निर्वाचन परिणाम के साथ तैयार किया गया प्रतिवेदन पेश किया। मौके पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सभा चुनाव को स्वच्छ, स्वतंत्र और निष्पक्ष तौर पर संपन्न किए होने को लेकर निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देने के साथ साथ निर्वाचन सुधार की दिशा में और अधिक कार्य करने का सुझाव भी दिया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा खून के अभाव में छटपटा रहे मरीजों को अब पैसे देकर खून की तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज द्वारा आज काठमांडू में आयोजित 14वें राष्ट्रीय स्वयंसेवी रक्तदाता दिवस कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि दाता द्वारा खून दिए जाने के बाद भी पीड़ितों को खून खरीदना पड़ रहा है और अब इस अंतर्विरोध का जल्द ही समाधान किया जाएगा। कार्यक्रम में नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति कांछा कुमार कर्माचार्य ने कहा कि जीवन का आधार ही खून है, इसलिए खून को सर्वसुलभ और सहज बनाने की ओर ध्यान दिया जाना जरूरी है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ रामवरण यादव ने कहा कि विकास के नाम पर होने वाले प्राकृतिक दोहन को रोका जाना जरूरी है। आज दनहू की शुक्ला गंडकी नगरपालिका 9 स्थित ढोरवाराही मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति डॉ यादव ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि राजमार्ग निर्माण करने के दौरान मनमाने तौर पर जंगल का विनाश नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संपदाओं का सदुपयोग कर देश को समृद्ध बनाया जा सकता है। शहीद सप्ताह अंतर्गत आज तीसरे दिन शहीद गंगालाल श्रेष्ठ और दशरथ चंद के पूर्ण कद की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 4 शहीदों की आधे कद वाली प्रतिमाओं के प्रतिस्थापन के क्रम में काठमांडू महानगरपालिका इससे पूर्व सिफल में मौजूद शहीद धर्मभक्त माथेमा की और पिछले साल टीकू पचली में शुक्रराज शास्त्री की प्रतिमा की प्रतिस्थापना कर चुकी है। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय युवा परिषद के संयुक्त आयोजन में काठमांडू में आज से राष्ट्रीय गजल महोत्सव शुरू हुआ है। 2 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में गजल वाचन व गायन, नेपाली गजल परंपरा, सिद्धांत और बहर के प्रयोग लगायत विषयों में विचार गोष्ठी व परिसंवाद होने की जानकारी आयोजकों ने दी। मोबाइल चार्ज करते समय करंट लगने से कंचनपुर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मोबाइल चार्ज करने के दौरान करंट लगने से कंचनपुर की वेदकोट नगर पालिका वार्ड नंबर 6 मुसेपानी के 35 वर्षीय घुम्मन डगोरा की हुई मौत की जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय कंचनपुर ने दी। धनुषा की गणेशमान चारनाथ नगर पालिका 6 के गोदार सड़क खंड पर आज बोलेरो जीप और मोटरसाइकिल के आपस में टकराने से 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में उसी वार्ड के मोटरसाइकिल चालक 50 वर्षीय जोगेंद्र साह और उनकी पत्नी 40 वर्षीय प्रमिला साह शामिल हैं। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा ने दी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजी।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हाँ त पनि एनटिसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसी को डे प्याक लिन *14# ह्यास डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन में कोरोना वायरस के कारण अब तक मरने वालों की तादाद 132 से अधिक हो चुकी है। अब यह वायरस दुनिया के कई दूसरे देशों तक भी पहुंच गया है। बीते साल के दिसंबर में चीन के वुहान शहर से फैले इस वायरस के संक्रमण का एक मामला राजधानी बीजिंग में भी पाया गया है, जिसके बाद बीजिंग प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो जितना हो सके यात्रा करने से बचें। ज्ञात हो कि जर्मनी और जापान में कोरोना वायरस के मामले ऐसे लोगों में पाए गए हैं जो कभी चीन नहीं गए। हांगकांग ने भी इसके मद्देनजर कड़ी पाबंदियों की घोषणा की है। रूस ने चीन के साथ सटी अपनी सीमा का अधिकतर हिस्सा पूरी तरह बंद कर दिया है। जानकारों के मुताबिक अपने आकार में क्राउन यानी कांटों वाला जैसा दिखने के कारण इस वायरस का नाम कोरोना पड़ा है। कोरोना वायरस इंसान के फेफड़ों में घातक संक्रमण करता है। सबसे पहले संक्रमित व्यक्ति के शरीर का तापमान बढ़ जाता है यानी उसे बुखार आता है, जिसके बाद उसे सूखी खांसी होती है। एक सप्ताह बाद उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। अब तक मौजूद जानकारी के अनुसार इस खास वायरस की एक बड़ी फैमिली है, जिसमें से केवल 6 वायरस ही इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इंसानों में बीमारी फैलाने वाला कोरोना वायरस इस फैमिली का 7वां सदस्य है। इस फैमिली के वायरस के कारण पहले व्यक्ति को सर्दी जुकाम और खांसी होती है और फिर स्थिति गंभीर होती जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के लिए अपनी बहुप्रतीक्षित योजना का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि ये 2 देशों को लेकर एक ऐसा समाधान है जिसे अमल में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि इसके तहत किसी भी इसराइली या फिलिस्तीनी को उनके घरों से उजाड़ा नहीं जाएगा। व्हाइट हाउस में इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ खड़े होकर इस शांति योजना की घोषणा करते हुए ट्रंप ने इसे फिलिस्तीनियों के लिए आखिरी अवसर बताया है। हालांकि फिलिस्तीनी पक्ष पहले ही लीक हो चुके इस प्रस्ताव को खारिज कर चुका है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, आज इसराइल ने शांति की ओर एक बड़ा कदम उठाया है। फिलिस्तीनी लोग गरीबी और हिंसा के शिकार हैं। कुछ तत्व चरमपंथ और उग्रवाद को बढ़ाने में इन लोगों का इस्तेमाल प्यादों की तरह करके इनका शोषण कर रहे हैं। इन्हें इससे कहीं बेहतर जिंदगी मिलनी चाहिए। ट्रंप ने बताया है कि इस योजना के तहत पूर्वी यरूशलम में एक फलस्तीनी राजधानी बनने की जगह मिलेगी, जहां पर अमेरिका गर्व के साथ अपना दूतावास खोलेगा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की केंद्रीय कमेटी की पूर्ण बैठक में 2 अध्यक्षों की ओर से राजनीतिक प्रतिवेदन हुआ प्रस्तुत। अगले साल चैत के अंतिम हफ्ते में महाधिवेशन करने का प्रतिवेदन का प्रस्ताव। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया राष्ट्रीय सभा चुनाव परिणाम सहित का प्रतिवेदन। और चीन में कोरोना वायरस के कारण अब तक मरने वालों की तादाद हो चुकी है 132 से अधिक। इसी के साथ हिंदी समाचार से मुझे अनुमति दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभरात्रि।